ओम शांति। प्यारे बाबा, हम सब बच्चों को ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर करते रहते हैं। बाबा ने हम बच्चों को सबसे बड़ा स्वमान ये दिया कि दुनिया जिसकी एक झलक देखने के लिए तरसती है, वो सर्वशक्तिवान परमात्मा हम बच्चों के स्नेह भरे बुलावे पे हमारे सामने आता भी है, हमें पढ़ाता भी है, हमें वरदान भी देता है और हमारा भाग्य भी बनाता है। इतना ऊंचा भाग्य पूरे कल्प में न किसी का हुआ था और न किसी का होगा। इसलिए हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। बाबा ज्ञान तो देता ही है, लेकिन ज्ञान भी प्यार प्यार में देता है। अगर बिना प्यार के कोई ज्ञान दे तो वो ज्ञान इतना नहीं सुहाता, लेकिन बाबा इतना गहरा ज्ञान प्यार में लपेट करके देता है तो वो ज्ञान प्यार ही लगता है। इसलिए बाबा कई बार हम बच्चों को ये भी कहता है कि मैंने आप बच्चों को ज्ञान देने से पहले प्यार से अपनी तरफ आकर्षित किया, अगर मैं प्यार से आकर्षित न करता तो ज्ञान स्वीकार्य भी ना होता। हम सब बाबा के बच्चे यहां बाबा के पास आए, अपने अपने जीवन के अंदर झांक करके देखें तो हम सबका भी यही अनुभव है कि पहले पहले किसी के प्यार ने हमको खींचा, ज्ञान तो बाद में मिला। तो बाबा हम बच्चों को ये तो कहते हैं कि प्यार में तो सब बच्चे पास हैं और प्यार में नंबर नहीं है, प्यार में कोई भी नंबर वार नहीं है, प्यार में सब नंबर वन है। लेकिन उसी प्यार में, प्रभु के प्रति उसी प्यार में कभी कभी परिस्थिति वश या किसी भी कारण से अंतर आ जाता है। तो पहली मुरली जो बाबा ने चलाई उसमें बाबा ने उस अंतर को भरने के लिए मंत्र दिया, याद है ना आप सभी को? कौन सा मंत्र दिया बाबा ने? पहली मुरली को याद कीजिए, इस सीजन की जो पहली मुरली थी, उस अंतर को भरने के लिए बाबा ने मंत्र दिया, अखंड महादानी भव। बाबा ने कहा देते रहेंगे तो अंतर मिट जाएगा, और देने के लिए बाबा ने पांच विधियां बताई थी, याद आ गई होंगी? मनसा के द्वारा शक्तियों का दान, वाचा के द्वारा ज्ञान का दान, कर्मणा के द्वारा गुणों का दान, बुद्धि के द्वारा समय का दान और संबंध संपर्क द्वारा खुशी का दान। ये पांच तरीके हैं जिनसे हमको निरंतर दान करना है। मनसा के द्वारा दान वो तो हम सबको आता है ना, वाचा वाला दान भी सबको आता है, कर्मणा के द्वारा गुणों का दान, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार कर लें। कर्मणा के द्वारा गुणों के दान का मतलब क्या है, कैसे दान करेंगे? कर्मणा के द्वारा सहनशीलता का दान कैसे करेंगे? गुणों के दान की बाबा ने बात कही ना, नम्रता का दान कैसे करेंगे, सत्यता का दान कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे चारों ओर बड़ी अशांति का वातावरण है, लेकिन हम शांत शांत अवस्था में स्थित होकर के अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो देखने वालों को हमारे से क्या प्रेरणा मिलेगी? शांति की प्रेरणा मिलेगी। तो ये हो गया शांति रूपी गुण का दान। इसी तरह से मान लीजिए परिस्थिति ऐसी है कि हम सहन कर रहे हैं खुशी से, कोई बात ऐसी हुई और हमने उसको सहन कर लिया, देखने वाले महसूस कर रहे हैं कि इतनी कठोर बात को भी इसने कैसे सहन कर लिया, तो सहन करके दिखाया, माना सहनशीलता के गुण का दान किया, देखने वाले को प्रेरणा मिल गई। तो जब हम अपने स्वरूप में स्थित होकर के उस गुण के स्वरूप में टिकते हैं तो समझो गुण का दान ऑटोमेटिक हो जाता है। चौथी बात बाबा ने कही, बुद्धि के द्वारा समय का दान। इसके ऊपर भी थोड़ा सा चिंतन करेंगे। बुद्धि के द्वारा समय के दान का मतलब क्या है? बुद्धि के द्वारा समय का दान बहुत गहरी बात है। ये कई बार मनुष्य की बुद्धि किसी बात में उलझी होती है, कोई उससे मिलना चाहता है तो अक्सर करके ऐसा व्यक्ति क्या उत्तर देता है, समय नहीं है मेरे पास, उनको कह दो मैं बहुत व्यस्त हूं। व्यस्त किस बात में है? बुद्धि की उलझन में व्यस्त है। तो जब हमारी बुद्धि उलझ जाती है तो हमारे बहुत सारे समय को खा जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि उलझन में है, किसी भी प्रकार की उलझन में, वह दूसरे के लिए तो क्या, अपने भी बहुत सारे कामों के लिए समय नहीं निकाल पाता। तो बुद्धि के द्वारा समय के दान का मतलब है कि हमारी बुद्धि क्लीन हो, क्लियर हो, सब उलझनों से मुक्त हो, ताकि हम समय को केवल अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों की सेवा के लिए निकाल सकें। बाबा कहते हैं, बच्चे आपका समय आपके अपने ऊपर बहुत कम लगना चाहिए। जैसे कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, बहुत बड़े परिवार वाले होते हैं, तो वो अपना सारा का सारा समय अपने परिवार की देख रेख में लगाते हैं और अपना तो भूल ही जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, आप बच्चे भी इस विश्व के पूर्वज हो, बड़े बुजुर्ग हो, आपका बहुत बड़ा परिवार है, आपके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत लोग आपसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। अगर आप अपने समय को अपने पर ही लगाते रहे, अपने ही उलझनों में अपने समय को गंवाते रहे, तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी के लिए समय कब निकालेंगे? तो बुद्धि द्वारा समय का दान, माना बुद्धि सुलझी हुई, साफ, क्लियर, स्पष्ट। और पांचवा बाबा ने कहा संबंध संपर्क द्वारा खुशी का दान। प्यारे बाबा ने हमें सात गुण बताए हैं, आत्मा के जो मूल सात गुण हैं, हम सबको याद रहते हैं ना वो, तो सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति, ये सात गुण हैं। लेकिन इनमें खुशी कहीं भी नहीं है, खुशी का जिक्र नहीं है, नहीं है ना? क्यों नहीं है? वैसे तो बाबा मुरली में खुशी की बहुत महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर ये भी कहते हैं चाहे जीवन चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए, अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो खुशी कहाँ है? वास्तव में खुशी एक ऐसा इत्र है, जब इत्र बनाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत प्रकार के फूलों का रस डाला जाता है तब इत्र तैयार होता है। तो खुशी भी एक ऐसा इत्र है जिसमें सारे गुणों का थोड़ा थोड़ा रस डलता है तब वो तैयार होता है। अगर एक गुण की भी कमी होगी तो खुशी गायब हो जाएगी, गायब होती रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा संबंध संपर्क द्वारा खुशी का दान करो। दुनिया में आज खुशी की कमी है। किसी ने तो कहा था कि कुछ समय में, आने वाले कुछ वर्षों में, लोग अगर किसी को खुश देखेंगे तो समझेंगे ये भी कोई म्यूजियम की चीज है, खुशी की इतनी कमी हो जाएगी। हंसते हुए आदमी को समझेंगे ये कोई अजूबा है, हंसी की इतनी कमी हो जाएगी आने वाले समय में। लेकिन बाबा के बच्चों के पास तो हंसी और खुशी का भंडार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया में कमी हो रही है और यहाँ भंडार बढ़ता जा रहा है। तो बाबा कहती हैं दुनिया में जिस चीज की कमी है आप उसी का दान करो। लोग हमें देख करके ये महसूस करें कि इनको इतनी खुशी मिली कहाँ से, ये इतने खुश क्यों हैं, इनकी खुशी का राज क्या है। बस अगर उनको ये महसूसता आ गई कि इनके पास बहुत खुशी है तो जैसे उनको दरवाजा मिल जाएगा बाबा की तरफ आने का। बाबा ने कहा जब आप इन पांच चीजों का दान करेंगे तो जिसको ये चीजें मिलेंगी उसको भी फायदा और आप देने वाले को भी फायदा, दोनों को फायदा होगा। जिसको मिलेंगी उसको फायदा तो ये होगा कि उसकी प्रोग्रेस हो जाएगी, आगे बढ़ेगा वो, और देने वाले को क्या फायदा होगा? बाबा ने कहा देने वाला महादानी बनने के कारण अपने सर्व विघ्नों से मुक्त हो जाएगा, समस्याओं से मुक्त हो जाएगा, वो समस्या मुक्त समाधान युक्त बन जाएगा, कारणों से मुक्त निवारण युक्त बन जाएगा। क्योंकि जब हम दूसरों के दुख दूर करते हैं, बाबा ने कर्म का सिद्धांत बताया, कर्म सिद्धांत ये है कि जब हम किसी का दुख दूर करते हैं तो हमारे पास कभी दुख आ नहीं सकता। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें हजार गुना मदद समय पर मिलती है। अगर हम किसी की आशाएं पूर्ण करते हैं तो हमारी अपनी आशाएं सब तक पूर्ण हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा देना वास्तव में लेना होता है और लेना वास्तव में देना होता है। इसलिए जब आप किसी की मदद करेंगे, जब आप किसी को ये चीजें देंगे तो बदले में आपको ढेरों दुआएं मिलेंगी, और जिसके पास दुआएं हैं उसे जीवन में चलना नहीं पड़ता, लेकिन दुआएं उसे अपने आप उड़ाती हैं, दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं। तो जब लिफ्ट मिल रही हो तो सीढ़ी पे चढ़ने की मेहनत क्यों करेंगे? तो लिफ्ट हैं दुआएं। बाबा ने कहा इस लिफ्ट में बैठ करके आप एक सेकंड में सूक्ष्म वतन, मूल वतन या अपनी राजधानी में पहुंच सकते हो। केवल एक सेकंड में इस लिफ्ट में बैठो। कौन सी लिफ्ट में? दुआओं की लिफ्ट में बैठो और एक सेकंड में अपने घर पहुंचो, अपनी राजधानी में पहुंचो या अपने वतन सूक्ष्म वतन में पहुंचो। तो बाबा हम बच्चों को ये लिफ्ट की गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इसका आधार है अखंड महादानी बनो। उसके लिए बाबा ने कहा अखंड महादानी बनने के लिए अनुभवी मूरत भी बनना पड़ेगा। ये बाबा को शब्द बहुत प्रिय लगता है, अनुभवी मूरत। दुनिया में भी अनुभवियों की बहुत कदर होती है और बाबा को भी अनुभवी बच्चों की बहुत कदर है। अनुभवी का अर्थ क्या है? किसको कहते हैं हम अनुभवी? बाबा कहते हैं अनुभवी बनो। अनुभवी का अर्थ क्या है? बाबा कहती हैं कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी समस्याएं हो, उन सब के बीच में रहते हुए जिसका आत्मिक बल खत्म ना हो उसको कहती हैं अनुभवी। अगर समस्या को देख करके, परिस्थिति को देख करके आत्मिक बल में कमी आ गई, इसका मतलब अनुभव में भी कमी थी। क्योंकि जो अनुभवी व्यक्ति होता है वो चारों विषयों का अनुभवी तो होता ही है, लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियां भी उसके जीवन का अंग होती हैं। उसे अनुभव है कि किस गुण का किस समय किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस शक्ति का किस समय कितना यूज करना है, और वो उस समय पर उसी शक्ति का या उसी गुण का प्रयोग करता है जिसके कारण उसका मनोबल क्षीण नहीं हो पाता। लेकिन जिसको इन चीजों को यूज करने का अनुभव नहीं होता या सही तरीके से यूज करने का अनुभव नहीं होता, वो क्या करेगा? परिस्थिति आने पर हिम्मत छोड़ देगा, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और इसलिए वो परिस्थिति के अधीन हो जाएगा। तो जो परिस्थिति के अधीन हो जाए वो अनुभवी नहीं हुआ, और जो परिस्थिति को ओवरकम कर ले उसको कहते हैं अनुभवी। तो बाबा अपने हर बच्चे को ऐसा अनुभवी देखना चाहता है। कोई भी बात, कोई भी स्थिति उसके आत्मबल को क्षीण न कर सके, ऐसा शक्तिशाली हर बच्चा बने, ये बाबा की आशय है हम बच्चों के प्रति। तो इसके लिए हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। जैसे रामायण में दिखाती हैं कि अंगद का पांव हिला नहीं, तो कोई भी बात आए हमें हिलाए नहीं। जब कोई भी बात आती है तो उस समय हम अपने आप को नंबर दें कि ये बात आई तो मैं कितनी परसेंट हिला या नहीं हिला, खुद खुद को नंबर दें साक्षी होकर के। और प्रैक्टिस करें कि बात कितनी भी आए लेकिन हमारा एक संकल्प भी उस बात के कारण व्यर्थ न जाए। अभ्यास करते करते हम ऐसे अनुभवी बन जाएंगे, फिर हमें बातें खिलौने की तरह से लगेंगी, फिर हम बातों का आह्वान करेंगे, फिर हम कहेंगे कि परिस्थिति आनी चाहिए, बाबा ने तो परिस्थिति की या माया की तुलना किसके साथ की? मच्छर के साथ, मक्खी के साथ। इतनी छोटी बात है ये, जिसको बच्चे कई बार बड़ी समझ लेते हैं, वो तो बहुत छोटी चीज है। कितनी छोटी चीज है, जैसे मक्खी बैठी और हमने उड़ा दी, पता भी नहीं पड़ा कब बैठी थी और कब उड़ा दी। हमारा कोई काम थोड़े रुकता है उसके बैठने और उड़ने में, ना हमारा समय व्यर्थ जाता है। उसकी आदत है बैठने की, वो बैठेगी, लेकिन हमें भी तो अभ्यास है उसको उड़ाने का, तो हमने उसको उड़ा दिया। तो बाबा कहते हैं माया की नगरी में हैं आप, इसलिए ये अपना अधिकार आखिरी तक रखेगी। जब तक आप इस नगरी में हैं, आखिरी श्वास तक ये अपना अधिकार रखेगी और आएगी आपके पास। ये आना नहीं छोड़ेगी, इसका आना आपके लिए प्रेरणा है, इसका आना आपको जागरूक बनाने के लिए है। आपको इसके आने से प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये आना नहीं छोड़ रही है, तो इसके इस आने से प्रेरणा लेकर के आपको इसे भगाना भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये अपना काम नहीं छोड़ती तो हम अपना काम क्यों छोड़े? और बाबा ने कह दिया ये छोड़ेगी नहीं आखिरी तक अपना कार्य। इसलिए हम ये स्वीकार करके चले, मान करके चले कि जब तक ये संगम योग है, जब तक हमारा ये पुरुषार्थी समय है, जब तक हम इस शरीर में हैं, जब तक इस माया नगरी में हैं, तब तक कभी कुछ और कभी कुछ होगा, होता रहेगा। लेकिन हम उससे आनंद लेना सीख लें, साक्षी होकर के उस खेल को देखना सीख लें, हम उसको इंजॉय करना सीख लें, तो माया का आना भी हमारे लिए एक इंजॉयमेंट बन जाएगी, आनंदित करने वाली चीज बन जाएगी। और इसलिए बाबा हमें कहती हैं बच्चे अपोजिशन को पोजिशन से बदलो। अपनी पोजिशन की स्मृति में रहो। हमारी पोजिशन बहुत ऊंची है, जिसको बाबा स्वमान कहता है। बाबा ने तो स्वमान की ड्रिल भी कराई। पहला स्वमान, मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। दूसरा स्वमान, ब्राह्मण क्या बनने वाले हैं? फरिश्ता बनने वाले हैं, मैं फरिश्ता। और तीसरा स्वमान, फरिश्ते फिर क्या जाके बनेंगे? देवता बनने वाला हूं। तो ये प्रैक्टिस, इस पोजीशन पर हम बैठे रहे हैं। ऐसे तो हमारे बहुत सारे स्वमान हैं, पांचों युगों के हिसाब से भी अगर हम चक्र लगाएं तो भी हमारे स्वमान है। परम धाम में हम अनादि रूप में परम पवित्र आत्मा, फिर सतयुग में उतर करके आए पूज्य आत्मा, विश्व के मालिक, उसके बाद द्वापर में पूजनीय, हमारी यादगारी भारत और विदेश में कोने कोने में, उसके बाद संगम युग में ब्राह्मण रूप और फिर फरिश्ता रूप। तो ये भी बहुत सुंदर हमारी यात्रा है पांच रूपों की, जिसको हम सारा दिन करते रहें तो हम अपनी सीट पर बैठे रहेंगे। और माया सीट की ऊंचाई हमारी इतनी है कि वहां तक उसकी पहुंच ही नहीं है, वो तो हमें तब पकड़ती है जब हम अपनी सीट से नीचे उतरते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने संगम युगी स्वमान के सिंहासन पर सदा विराजमान रहो। जब किसी को भविष्य में कोई चीज, कोई काम करना हो तो उसकी प्रैक्टिस वो वर्तमान में करता है। जैसे एक बिजनेसमैन का बेटा था, वो सारा दिन अपना साइन करने का अभ्यास करता रहता था। उसको पूछा कॉलेज में भी, तुम ये क्यों करते हो? तो बोला मेरे को अपने पिताजी की फर्म संभालनी है और इतने सारे साइन करने पड़ेंगे, तो मैं अभ्यास कर रहा हूं, मैं बहुत कम समय में अपने साइन कर सकूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको भी सतयुग में जाकर के सिंहासन संभालना है, आप राजा बनेंगे, आपको सिंहासन पर बैठना पड़ेगा। लेकिन सिंहासन पर बैठने की भी तो प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस कब करेंगे? वो अभी करनी है। तो अभी भी बाबा ने हमको सिंहासन दिए हैं, इस पर बैठ करके दिखाओ। और जो जितने लंबे समय तक इस सिंहासन पर बैठेगा सतयुग में, उसी को सिंहासन मिलेगा। जो संगम युग पर अपने सिंहासन से फिसल जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? सतयुग में फिर कैसे कामयाब होगा वो? तो संगम युग पर हमारा सिंहासन कौन सा है? जिस पर हम बैठ करके बाबा को ये प्रमाणित कर देंगे कि हाँ हम नहीं फिसलेंगे, हम बैठने लायक हैं और हम लंबे समय तक बैठ सकते हैं। कितने सिंहासन है संगम युग के? सबसे पहले तो भ्रकुटी सिंहासन है। बाबा कहते हैं इस पर बैठे रहो, नीचे उतरोगे तो मिट्टी लगेगी, सिंहासन पे बैठे रहो। सिंहासन से नीचे उतरते ही देह अभिमान की मिट्टी लगेगी। तो पहला सिंहासन तो ये है। दूसरा सिंहासन बाबा का दिल तख्त है। जो भ्रकुटी सिंहासन पर बैठा रहता है उसके लिए दिल तख्त पर बैठना बहुत सरल है, उसके लिए वो सिंहासन बहुत नजदीक है। और भ्रकुटी सिंहासन के साथ साथ हमारे स्वमान के बहुत सारे सिंहासन है। जब यहां बैठते हैं तो कितने स्वमान याद आते हैं, मैं कौन सी आत्मा हूं, पूर्वज आत्मा हूं, उद्धार मूर्त आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, सबकी शुभ चिंतक आत्मा हूं, विघ्न विनाशक आत्मा हूं, विजयी आत्मा हूं, महान आत्मा हूं। सारे कल्प में शुरू से अंत तक पार्ट बजाने वाली हीरो आत्मा हूं। कितने सारे स्वमान हैं जो याद आते हैं बार बार। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में आप बच्चों ने मेरी माला सिमरण की और अब संगम युग पर आप अपने स्वमानों की माला सिमरण करो। माला सिमरने की तो आदत है ना, तो अब अपने स्वमानों की माला का सिमरण करो और खुश होते रहो अपने इतने रूपों को देखकर। दुनिया में आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र के लिए इतने महान शब्द यूज नहीं किए होंगे, इतने नाम नहीं निकाले होंगे, चाहे वो कितना भी प्रिय रहा हो। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को इतने नाम दिए हैं, इतने रूप दिए हैं। बाबा की नजरों में हमारे कितने ऊंचे ऊंचे स्वरूप हैं, उनको अगर हम याद करें और उस खुशी में अगर हम झूमें, तो बाबा कहते हैं बच्चे सदा इस खुशी के नशे में रहो। ये नशा, ये खुशी हमारे सभी बाधाओं विघ्नों को खत्म करने वाली है। दुनिया में जिसको नशा होता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो बाबा कहते हैं आप इस अलौकिक नशे में रहेंगे तो आपको भी ये दुनिया होते हुए भी जैसे नहीं दिखाई देगी, देखते हुए भी इसको मत देखो, इसकी बातें सुनते हुए भी मत सुनो, वो सुनो जो बाबा कह रहा है, वो देखो जो बाबा दिखा रहा है। तो बाबा हमें क्या दिखाता है? एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। ये तो जीवन बंद की दुनिया है, इसको देखते तो हमारे 63 जन्म गुजर गए, इसको देख देख करके तो हम थक गए थे। इसलिए भगवान कहती हैं अब नया देखो, नया सुनो, नया बोलो, नया करो। जो 63 जन्मों से करते आ रहे हो वही करते रहोगे, तो फिर जो 63 जन्मों से पाते आ रहे हो वही पाते रहोगे। नया प्रारब्ध कैसे बनेगा? नया तो तब बनेगा जब हम कुछ नया करेंगे, और नया करना हमें बाबा सिखा रहा है। तो ऐसे प्यारे बाबा के, ऐसे उपकारी बाबा के, ऐसे भोले भंडारी बाबा के हम सब बच्चे प्यार के पात्र हैं। जैसे कहते ना आंधी का एक झोंका आया और सब कुछ उड़ा ले गया, तो बाबा के शुद्ध स्नेह के झोंके हम बच्चों को मिलते हैं और हमारे सारे अवगुण सारी बुराइयां उन झोंकों में बह जाती हैं, उड़ जाती हैं और हम एक नई निखरी हुई पवित्र आत्मा बन जाते हैं। संगम युग में हमारी सबसे बड़ी पूंजी ये परमात्म प्यार है, जिसके हम सब पात्र हैं। बाबा मुरली चलाते हैं तो भी यही कहते हैं, मैं अपने परमात्म प्यार के बच्चों को देख रहा हूं। तो हम सब भगवान के प्रेम के पात्र हैं, उसका प्रेम हमको मिला है, इतनी बड़ी पूंजी हमको मिल गई, बाकी क्या चाहिए। इसलिए बाबा कहती हैं, ये मत कहो कि मैं पा रहा हूं, पा रहा हूं कहना और पा लिया कहना, दोनों में कितना अंतर है, बहुत अंतर है ना। तो हम सब कौन सी आत्माएं हैं, पा रही हैं या पा चुकी हैं? पा लिया, पा चुके हैं, जो पाना था सो पा लिया, जो जानना था सो जान लिया, जो देखना था सो देख लिया, और जो अनुभव करना था सो ये भी कहीं अनुभव कर लिया, माना अनुभवी बन गए। तो बाबा ने हम बच्चों को अपना अंत दे दिया। भक्ति में तो कहते हैं भगवान का अंत नहीं पाया जा सकता, लेकिन बाबा कहते हैं मैंने अपना अंत आपके सामने रख दिया, आपसे कुछ भी नहीं छिपाया। गुरु, दुनिया के गुरु जो होते हैं वो तो कहते हैं भाई एक बात को रख लो आखिरी तक सिखाने के लिए, लेकिन बाबा ने तो ऐसी कोई बात नहीं रखी, आते ही हम बच्चों के आगे सब कुछ स्पष्ट कर दिया। तो अब हम सब कौन हैं? मास्टर ज्ञान स्वरूप आत्माएं। तो जब हमें सब स्पष्ट ज्ञान मिल गया तो अज्ञान खत्म हो गया। अज्ञान दुख का प्रतीक है और ज्ञान सुख का प्रतीक है। तो हम सब हो गए सुख स्वरूप आत्माएं। ओम शांति।